हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे
सभी भक्तों से विनती है कि अपना मोबाइल फोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें। अभी सभी भक्त देख लीजिए आपका मोबाइल।
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सतहिस्टिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद नौवा अध्याय। माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। श्लोक संख्या 21। नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। तीन प्रभु जी तीन माता जी बोलिए। यम सुखापो भगवान् इनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां था भक्तिमतामिह। यम सुखापो भगवान् इनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां था भक्तिमतामिह। यम सुखापो भगवान् देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। सुखापो भगवान् नाम गोपिका सुतः नाम चात्मभूतानां तिमतामिह। सुखापो भगवान् देहि नाम गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुतः चात्म भूतानाम यथा भक्तिमतामिह नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह न नहीं अयम यह सुख आपह सरलता से प्राप्य अथवा सुख का लक्ष्य भगवान देही नाम देहात्म बुद्धि को प्राप्त पुरुषों का विशेषतया कर्मियों का गोपिका सुतः माता यशोदा का पुत्र कृष्ण वसुदेव पुत्र होने से कृष्ण वासुदेव और यशोदा पुत्र होने से कृष्ण कहलाते हैं। ज्ञानी नाम च तथा भवबंधन से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील ज्ञानियों का आत्मभूतानाम आत्मनिर्भर योगियों का यथा जैसे भक्ति मताम भक्तों का इह इस जगत में अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं, किंतु वे मनोधर्मियों घोर तपों द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते हैं। तात्पर्य, माता यशोदा के पुत्र रूप में कृष्ण भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध होते हैं, किंतु तपस्वियों योगियों ज्ञानियों तथा देहात्म बुद्धि वालों को नहीं। यद्यपि इन्हें कभी कभी शांत भक्त कहा जाता है, किंतु असली भक्ति तो दास्य रस से प्रारंभ होती है। भगवद गीता के 4th अध्याय के 11th श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, सारे जीव जिस तरह से मेरी शरण में आते हैं उन्हें उसी तरह पुरस्कृत करता हूँ। हर व्यक्ति सभी तरह से मेरे पथ का अनुसरण करता है। हर व्यक्ति कृष्ण को खोजता है, क्योंकि वे सारे जीवात्माओं के परमात्मा हैं। हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय है और वह उसकी रक्षा करना चाहता है, क्योंकि वह शरीर के भीतर आत्मा रूप में रहता है। और हर व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का अंश है। अतएव हर व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनर्जीवित करके सुख की खोज में लगा रहता है। जैसा कि भगवद गीता के 15th अध्याय के 15th श्लोक में भगवान कहते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। इसीलिए सारे कर्मी ज्ञानी योगी तथा संत पुरुष कृष्ण की खोज करते हैं। किंतु कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले भक्तों के चरण चिन्हों का, विशेष रूप से वृंदावन वासियों का अनुसरण करते हुए मनुष्य कृष्ण के सानिध्य के परम पद तक पहुंच सकता है। जैसा कि कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। वृंदावन वासी माता यशोदा, कृष्ण के मित्र तथा कृष्ण की युगल प्रेमिकाएं, वे तरुण गोपियां जिनके साथ वे नाचते हैं, कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसे कृष्ण अवश्य प्राप्त होते हैं। यद्यपि कृष्ण के नित्य सिद्ध अंश सदैव कृष्ण के साथ रहते हैं, किंतु यदि साधना सिद्धि में लगे लोग कृष्ण के इन नित्य सिद्ध संगियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं तो वे भी बिना किसी कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो देहात्म बुद्धि में लिप्त रहते हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी तथा शिव जी को अत्यंत प्रतिष्ठित पद प्राप्त है और इस तरह वे परम पूज्य ईश्वर हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी गुण अवतार होने तथा उच्च पद प्राप्त होने से अपने को कुछ कुछ कृष्ण जैसा अनुभव करते हैं, किंतु वृंदावन में रहने वाले शुद्ध भक्तों में देहात्म बुद्धि नहीं रहती। वे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में समर्पित रहते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि प्रेमा पुमर्थो महान। जीवन का सर्वोच्च सिद्धि, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्रेमा अर्थात कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है। और माता यशोदा उन सर्वोच्च भक्तों में से हैं जिन्होंने यह सिद्धि प्राप्त कर ली है। अनुवाद को दोहराइए। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ हैं, किंतु वे मनोधर्मियों और तपों द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 9वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ये बतला रहे हैं कि कौन सुलभ रीति से आसानी से श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं। वृंदावन की लीलाओं का वर्णन इन अध्यायों में शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं। वृंदावन की लीलाएं बहुत मधुर हैं, जैसा कि यहां तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले भक्तों के चरण चिन्हों का विशेष रूप से वृंदावन वासियों का अनुसरण करते हुए मनुष्य कृष्ण के सानिध्य के परम पद तक पहुंच सकता है। जैसा कि कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, कृष्ण वृंदावन को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। वृंदावन वासी माता यशोदा, कृष्ण के मित्र तथा कृष्ण की युगल प्रेमिकाएं, वे तरुण गोपियां जिनके साथ वे नाचते हैं, कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले हैं, और यदि कोई व्यक्ति इन भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसे कृष्ण अवश्य प्राप्त होते हैं। तो कौन सी महत्वपूर्ण बात बताई गई है यहां पर, कौन से एक विशेष रहस्य का खुलासा श्रील प्रभुपाद जी यहां पर कर रहे हैं इस तात्पर्य में? वो कह रहे हैं कि न केवल सुलभ रीति से यदि हमें श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, यदि हमें सबसे ऊंचा श्रेष्ठ मधुर प्रेम श्री कृष्ण के प्रति प्राप्त करना है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति की प्राप्ति करनी है, तो हमें वृंदावन के भक्तों के चरण कमलों का आश्रय लेना होगा, उनके पद चिन्हों में चलना होगा, उनका अनुसरण करना होगा। वृंदावन के जो भक्त हैं भगवान कृष्ण के, उनके जैसा कोई भक्त नहीं, कहीं भी भक्त नहीं पाए जाते, यहां तक कि वैकुंठ जगत में भी। वृंदावन का प्रेम बहुत विशेष है, इसलिए बार बार हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में वृंदावन के भक्तों के प्रेम की विशेषता का उल्लेख आता है, इस पे जोर दिया जाता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा कि हमारे लिए श्रीमद् भागवत ही सबसे ऊंचा प्रमाण है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम, हमारे आराध्य वृंदावन में रहने वाले नंद नंदन श्री कृष्ण से है, और हमारा जीवन का ध्येय है प्रेमापमर्थो महान पुंस अर्थात मनुष्य, अर्थ अर्थात लाभ हित, सबसे ऊंचा हित, सबसे बड़ा लाभ मनुष्यों के लिए है ये वृंदावन के कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। तो जो वृंदावन के गोपियां हैं उनकी जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए श्रीमद् भागवत के अनुसार जो प्रेमा पुमर्थो महान श्रीमद् भागवतम मतमिदम, तो महाप्रभु का मत प्रधान है, प्रमुख है, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत के मत के अनुसार है। श्रीमद् भागवत के सिद्धांत ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें ये देखना है कि कैसे वृंदावन के निवासियों के पद चिन्हों में हम चल सकते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी यहां आज के श्लोक में कुछ अंतर बतला रहे हैं कि तरह तरह के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाले लोग होते हैं या तरह तरह के मानसिकता के लोग होते हैं, परंतु ये सारे कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। न अयम सुखापो भगवान, सुख आपह मतलब जो जिसे सुख प्राप्त होता है अर्थात जो प्राप्य है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति इन लोगों के लिए नहीं हो सकती है। किन लोगों के लिए? देही नाम, जो गोपिका सुत है, यशोदा माता के पुत्र जो हैं कृष्ण, उनकी प्राप्ति ऐसे लोगों के लिए नहीं हो सकता है जो कि देही हैं। देही नाम का तात्पर्य यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि जो देहात्म बुद्धि में होते हैं, जो अपने आप को शरीर समझते हैं, शरीर और आत्मा में भेद नहीं समझते हैं, और ऐसे लोग अपने शरीर को सुख देना ही जीवन का ध्येय मानते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, सबसे बड़ा धर्म या सबसे बड़ी अर्चना पद्धति दुनिया में आज कौन सी है, और वो कौन सी अर्चना पद्धति है जो सबसे तेज गति से दुनिया में बढ़ रही है? आप में से कोई उत्तर देंगे? हाँ आप कृष्ण के अच्छे भक्त हैं इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, देह की पूजा करने वाले, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया। कोई कहेंगे कि नहीं ये विशेष धर्म है, यहाँ ज्यादा प्रचार हो रहा है, ये फैल रहा है, और दूसरे देशों में ये अमुक ये धर्म है, ये फैल रहा है, इस धर्म के अनुयायी जो हैं इनकी संख्या इतनी है। परंतु वास्तव में चाहे जो भी धर्म, जिस भी धर्म का पालन कर रहे हों, सबसे बड़ा धर्म है देह की पूजा करने वालों की, देहात्म बुद्धि वालों की आत्म पूजा। ये आत्म पूजा विधि क्या होती है? ये शरीर और मन को ही संतुष्ट करना सर्वोच्च सफलता है और सुख है। बस शरीर और मन को संतुष्ट करना चाहिए तो बस जीवन सफल। और फिर इसका बुनियाद क्या है? एक विचारधारा है। विचारधारा ये है कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, और मेरे विचार जो हैं वही सही है, मेरा मन जो भी चाहता है वही सही है, और इस मेरी इच्छाओं को पूर्ण करना ही सफलता है। मैं ही जीवन का या ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु हूं, ये मेरे संतुष्टि के लिए, मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही ये सब कुछ है। ये बहुत सूक्ष्म या स्थूल एक बुनियादी धारणा होती है लोगों के मन में, भले वो अपने ही मानसिकता को पहचाने या न पहचाने। तो ये आत्म पूजा में सभी लोग लगे हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी धर्म के हो। विरला ही आप जैसे कृष्ण भक्त हैं जो इस देहात्म पूजा से परे चले गए हैं, तो इसको आत्म पूजा कहते हैं। देही नाम, जो अपने आप को, अपने शरीर को ही सर्वस्व समझते हैं। तो एक कहानी है, छोटी सी कहानी, कि एक व्यक्ति था, वो साधु के पास, साधु उसको मिले, उसकी वैसे श्रद्धा ज्यादा नहीं थी, वो भी ऐसे ही इस तरह का व्यक्ति था। तो साधु ने प्रचार किया उसको, भगवान की पूजा आदि करने के लिए कुछ उपदेश दिए, और छोटी सी भगवान कृष्ण की मूर्ति उसको भेंट में दे दी। तो उसने ले तो ली मूर्ति, लेकिन क्या, ये मूर्ति कितनी छोटी है, मुझे कोई शक्तिशाली व्यक्ति की उपासना करनी है, ये छोटी सी मूर्ति कैसे शक्तिशाली हो सकती है? तो साधु ने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देना शुरू किया और बताया कि ये विग्रह है, भगवान है ये स्वयं, इसको साधारण न समझना, ये शक्तिहीन नहीं है, ये प्रत्यक्ष साक्षात भगवान है। लेकिन उस व्यक्ति के मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। तो खैर, अभी साधु ने दिया है तो घर में रखें, तो अभी भोग भी चढ़ाना है, साधु ने बताया तो भोग भी रख रहे थे। तो एक बार हुआ ये कि घर में एक चूहा आया, होता है ना कभी कभी चूहे आ जाते हैं, तो चूहे ने आके भगवान के सिंहासन पर रखा हुआ जो भोग था उसको खाना शुरू कर दिया। तो उनको बहुत बड़ा, बहुत विचलित हो गए उनकी पत्नी, तो भगा दिया उस चूहे को। तो चूहे को दूर रखने के लिए फिर उन्होंने सोचा ये चूहा जो है ये भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है। देखो, कृष्ण के सामने भोजन रखा हुआ है, चूहे ने आके ले लिया, तो ये कृष्ण की मूर्ति से अधिक शक्तिशाली ये चूहा है, तो कृष्ण की पूजा क्यों करूंगा, मैं चूहे की पूजा करूंगा। तो फिर उसके बाद चूहे को भोग लगाना शुरू कर दिया। चूहा आता था चूहे की आरती उतारने लगा। फिर थोड़े दिन बाद बिल्ली आ गई वहां पे, तो बिल्ली को देखकर चूहा भाग गया। उसने सोचा कि बिल्ली चूहे से ज्यादा शक्तिशाली है, तो फिर बिल्ली को भोग चढ़ाना शुरू कर दिया, बिल्ली की आरती उतारना शुरू कर दी। फिर थोड़े समय तक ऐसे हुआ कि फिर जैसे यहाँ कुत्ते होते हैं ना सड़क पे, रात भर भौंकते हैं, सोने नहीं देते, तो कुत्ता भी आ गया, तो कुत्ते को देखकर बिल्ली भाग गई। तो व्यक्ति ने सोचा, रे कुत्ता बिल्ली से ज्यादा शक्तिशाली है, तो मुझे कुत्ते की उपासना करनी चाहिए। तो कुत्ते को भोग चढ़ाना शुरू किया, आरती उतारना शुरू कर दिया। और एक बार वो कुत्ते ने आके घर में गंदगी कर दी, तो उस व्यक्ति के पत्नी को गुस्सा आया, उसने लाठी लेकर कुत्ते को भगा दिया। तो उसने सोचा मेरी पत्नी ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसके बाद पत्नी की उपासना करना शुरू कर दिया। पत्नी को भोग चढ़ाया, पत्नी की आरती उतारने लगे। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ कि पत्नी ने भोजन सही समय पे नहीं दिया, उसको गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने कुछ जोर ऊंची आवाज में कुछ बोल दी, पत्नी घबरा गई। तो घबरा कर फिर सही समय पे प्रसाद भोजन देने लगी। उसने सोचा मैं मेरे पत्नी से ज्यादा शक्तिशाली हूं, तो फिर क्या करना चाहिए, मेरी ही पूजा करनी चाहिए। तो अपनी ही पूजा करने, अपने आप को ही भोग चढ़ाने लगे, अपने आप की आरती करने लगे। तो ये एक केवल मजाक की कहानी मत समझिए, इसके पीछे एक विचारधारा है। ये जो देहात्म बुद्धि है यही आत्म पूजा है, मैं ही सब कुछ हूं। ये एक स्थूल अवस्था है, परंतु जब व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ जाता है उसके दार्शनिक विश्लेषण में या ज्ञान में, तो उसे पता चलने लगता है कि अरे मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैंने सुना है। परंतु ये आत्मा है ये तो समझ में आया, परंतु आत्मा कहां से आई? आत्मा और भगवान, भगवान कौन है? भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। तो जब लोग ऐसे आत्मा को जानते हैं और कृष्ण को नहीं जानते हैं, तो फिर सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं, परंतु आत्मा ही सब कुछ है, मैं ही भगवान हूं। वो व्यक्ति सोच रहा था मेरा शरीर भगवान है, और ये व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ गया, वो सोचता है मैं आत्मा हूं परंतु आत्मा ही भगवान है। सोहम सोहम सोहम, आपने सुना होगा ना, कई लोग ये सोहम मंत्र का उच्चारण करते हैं। सोहम का अर्थ क्या होता है? सह अहम, मैं वो हूं। वो अर्थात कौन? वो परम सत्य जो निराकार है, मैं वो हूं। अहम सह या सह अहम सोहम। तो ये एक कहानी आपको पहले भी हम सुना चुके हैं, फिर भी अभी संदर्भ के अनुसार उपयुक्त है। तो फिर से दोहरा रहा हूं कि एक बार एक व्यक्ति एक साधु से मिला, तो यह साधु ये सोहम विचार वाला था, तो उसने इस व्यक्ति से कह दिया, देखो तुम भगवान हो, तुम आत्मा हो और आत्मा ही भगवान है, इसलिए तुम्हारी साधना का जो साधन है वो ये होना चाहिए, सोहम सोहम सोहम, तो तुम ये सोहम मंत्र का सतत उच्चारण करो। तो भक्त, वो व्यक्ति मासूम था, तो उसने सोहम सोहम कहना शुरू कर दिया। एक बार क्या हुआ कि यहां बेलगाम के राधा गोकुलानंद मंदिर का भक्त उस व्यक्ति को मिला, तो उसने देखा ये सोहम सोहम क्या कर रहे हो, तो उसने बोला ये तो ठीक नहीं है, परंतु वो व्यक्ति ने, एक साधु ने कहा था मुझे करने के लिए, तो ठीक है ऐसे कहो करो, ये सोहम के सामने एक दा लगा दो बस, तो क्या हो जाता है, दासोहम, कि मैं दास हूं, सेवक हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं सेवक हूं, तो दासोहम 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 कहने लगा। फिर से वो साधु से मिला वो व्यक्ति एक दिन, तो साधु ने कहा कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तुम्हें सोहम कहने के लिए बताया था कि तुम ही स्वामी हो, तुम ही भगवान हो, और तुमने अपने आप को सेवक बना दिया, तुम तो इतने बड़े हो और तुमने अपने आप को इतना छोटा बना दिया, सेवक बना दिया अपने आप को, तो खैर दासोहम बोलने की आदत हो गई है ना, तो अभी क्या करो, तुम इसके सामने स लगा दो, तो क्या हो जाएगा, सदा सोहम, मैं सदैव मैं वही हूं, आप समझ रहे हैं, सदा सोहम, तो सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम कहना शुरू कर दिया। फिर से वो राधा गोकुलानंद मंदिर के भक्त मिल गए उनको, हे एनरी क्या कर रहे हो, फिर से ये सब कर रहे हो, ऐसा मत करो, अभी आदत हो गई है ना सदा सोहम कहते हुए, तो इसके सामने फिर से दा जोड़ दो, तो क्या हो गया, दासो दासो हम दासो दासो हम दासो दासो हम, मैं भगवान के दासों का दास हूं, दासों का दास हूं, दासों का दास हूं। तो ये वास्तव में वास्तविक स्थिति हमारी है। चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कि हमारा वास्तविक स्वरूप है कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, बल्कि गोपी भर्त हो पद कमलयोर दास दासानु दास, हम सीधे कृष्ण के दास नहीं हैं, हम कृष्णों के दासों के दासों के दास हैं, ये हमारा परिचय होना चाहिए। तो खैर, तो व्यक्ति धीरे से इस भावना तक पहुंच जाता है। हमने थोड़ी देर पहले उस व्यक्ति के बारे में बताया जिसने पहले भगवान कृष्ण से लेकर अंततः वो अपनी पूजा करने लगा करते करते करते। तो और एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने एक कथा बताई थी कि एक व्यक्ति था, उसकी भी इच्छा थी कि मुझे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करनी है। वो एक गांव में रहता था, तो उसने सोचा कि गांव में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, सरपंच है, तो वो सरपंच के पास गया और उसने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, तो सरपंच ने उस व्यक्ति को अपनी सेवा में ले लिया। फिर एक बार क्या हुआ कि सरपंच कहीं गया, तो व्यक्ति ने पूछा कि आप कहाँ गए थे, बोला मैं जिला प्रमुख के पास गया था। क्यों गए थे, ने कुछ हिसाब किताब देना था, उनसे कुछ आदेश लेना था। अरे तो वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है क्या, आपसे ज्यादा ऊंचे पद पर है वो, तो हाँ बिल्कुल, तो मैं क्या उनकी सेवा कर सकता हूं क्योंकि वो आपसे ज्यादा ऊंचे हैं, हाँ अवश्य। तो फिर वो जिलाधिकारी के सेवा में लग गए, फिर देखा कि जिलाधिकारी कहीं जा रहे हैं, तो पूछा कहाँ जा रहे हैं, राज्यपाल के पास, तो फिर वो राज्यपाल की सेवा में लग गए, फिर राज्यपाल कहीं जा रहे थे, वो कहाँ जा रहे हो आप, राजा के पास, तो राजा आपसे ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ है, तो फिर मैं राजा की सेवा के लिए करूं मैं जाऊंगा। मैं ठीक है, तो राजा की सेवा में लगा दिया। तो राजा की सेवा करते करते उन्होंने देखा कि ये राजा जो है ये समय समय पर जंगल में अकेले चले जाते हैं। तो एक दिन उनके पीछे पीछे गए तो देखा कि जंगल के अंदर एक कुटिया है और कुटिया में एक साधु निवास करते हैं, और ये राजा उनके पास जाके पूरा दंडवत प्रणाम करने लगे और उनसे उस उपदेश ग्रहण करने लगे। तो बाद में उस व्यक्ति ने पूछा कि आप तो राजा हैं और आपने आके इस व्यक्ति के सामने पूरा दंडवत प्रणाम किया, तो ये आपसे बड़े हैं क्या? हाँ, ये तो मुझसे बहुत बड़े हैं, ये भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, तो फिर मैं इनकी सेवा करने लगूं? हाँ करो। फिर उनके पास गए, फिर देखा कि ये साधु कहीं जाके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो देखा कि वहां भगवान कृष्ण की मूर्ति है, तो ये आपसे बड़े हैं कि? हाँ, कृष्ण सबके स्वामी हैं, तो मैं भी इनकी सेवा करूंगा। ठीक है, इस तरह से वो भगवान कृष्ण की सेवा में लग गए। तो देखिए, पहले जो व्यक्ति था और इस व्यक्ति में कितना बड़ा अंतर है। दोनों खोज में थे कि मुझे सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करनी है, लेकिन पहले व्यक्ति कितने गलत निष्कर्ष पे पहुंच गया, दूसरा व्यक्ति सही निष्कर्ष पे पहुंच गया। क्योंकि पहले व्यक्ति जो है वो केवल अपने बुद्धि के अनुसार, अपने मानसिक चिंतन के अनुसार कोई विश्लेषण कर रहा था, परंतु ये दूसरा व्यक्ति था, इसने जो साधुओं के वाणी के ऊपर भरोसा किया, जब साधु ने उनको बताया कि यहां सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण हैं और इसलिए हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, तो वो कृष्ण की सेवा में लग गए। इसलिए यदि हम देही नाम की जो बात हो रही है उससे ऊपर हम ज्ञानी योगी के स्तर तक भी पहुंच जाएं, हम बहुत निपुण हो जाएं मानसिक चिंतन करने में, मनोधर्मी होने में, परंतु यदि हमने हमारे विश्लेषण में, हमारे दार्शनिक चिंतन आदि में हमने गुरु साधु शास्त्र का आश्रय नहीं लिया, तो निश्चित कोई गलत निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएंगे। तो कम से कम हमें यह जानना है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के भक्तों के दास हैं, श्री कृष्ण हमारे नित्य स्वामी हैं, तो ये हम सही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इसलिए देही नाम, ज्ञानी नाम च आत्मभूता नाम, आत्मभूता नाम अर्थात वो लोग जो आत्मसंतुष्ट हैं अपनी तपस्या आदि के द्वारा, ये योगी जन आदि हैं, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, नहीं, कोटि कोटि जन्मों तक ऐसे तपस्या करने के बाद भी ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि भगवान केवल भक्ति के द्वारा जाने जा सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चाश्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल भक्ति के द्वारा ही तुम मुझ भगवान को सही तरह से जान पाओगे। तो इसलिए प्रेम या भक्ति के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है भगवान को जानने के लिए। इसलिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न हमें देही होना है, न ज्ञानी होना है या आत्मभूत होना है, न हमें कर्मी होना है, ज्ञानी होना है, योगी होना है, तो हमें क्या होना है? भक्ति मत अर्थात जो भक्ति में लगे हुए हैं पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, तो ऐसे भक्त ही केवल भगवान कृष्ण को जान सकते हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद जी यहां बतला रहे हैं कि भगवान के किस तरह के भक्त हमें बनने चाहिए, वो यहां बता रहे हैं, स्फूर्त प्रेमा भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए सुलभ है, स्फूर्त प्रेमा भक्ति अर्थात जो स्वयं स्फूर्ति से उत्पन्न होने वाला प्रेम है, ऐसा प्रेम भगवान के लिए जो स्वाभाविक है, जो नैसर्गिक है, जो केवल एक औपचारिकता के लिए नहीं किया जा रहा है कि मुझे बताया गया है कि भक्ति करनी चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं, ये कितना बोझ है, ये माला समाप्त करने हैं, नहीं, जो स्वाभाविक रूप से प्रेम कृष्ण के प्रति उत्पन्न होता है, जिसमें को विधि नियम आदि के कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि वो इसके परे हो चुके हैं, इतना तीव्र इनका प्रेम है कि वो देहात्म बुद्धि से भी परे हो चुके हैं, ज्ञान योग आदि के भी परे हो चुके हैं। तो ऐसे प्रेमा भक्ति अवश्य वैकुंठ में पाई जाती है, परंतु वहां पर भी भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं भगवान का दास हूं, ये भावना प्रधान होती है। परंतु वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में जो ग्वाल बाल हैं वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, गोपियां श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानती हैं, माता यशोदा और नंद महाराज श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन में वो जो एक वैकुंठ का भाव है वो भी शुद्ध भाव है, परंतु वो भाव जिसमें वो अपने आप को श्री कृष्ण से निम्न स्तर का मानते हैं, कृष्ण को स्वामी मानते हैं, वो भाव नहीं है, बल्कि एक ममत्व, बल्कि एक प्रभुत्व की भावना होती है कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। यहां तक कि कृष्ण के वृंदावन के भक्त श्री कृष्ण को आदेश देते हैं, श्री कृष्ण को कभी कभी डरा देते हैं। तो ये बहुत मधुर और निकट प्रेम है भक्ति का। तो ये भक्ति मताम इह, तो जिस भक्ति की बात यहां सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं वो इस वृंदावन के प्रेम की बात है। वृंदावन में आज अब पिछले गत अनेक वर्षों से भी बहुत सारे भक्त आते हैं वहां पर। ऐसे दो तीन ऐसे लीलाओं बताना चाहूंगा कि ये स्वाभाविक प्रेम कैसे होता है। आप बांके बिहारी मंदिर का नाम सुना है आपने? बांके बिहारी, श्री कृष्ण बके हुए हैं त्रिभंग रूप में, बांसुरी बजाते हैं। स्वामी हरिदास थे, उनको ये उनके द्वारा ये स्थापना हुई मूर्ति की, भगवान प्रकट हुए उनके सामने। ये स्वामी हरिदास कौन थे? तानसेन के गुरु थे, शुद्ध भक्त थे वो भगवान कृष्ण के। तो बांके बिहारी मंदिर में अनेक वर्ष पूर्व एक राजस्थान से एक राजपूत राजकुमारी आई, और जैसे ही बांके बिहारी का दर्शन उन्होंने किया, इतने भाव विभोर हो गई, इतने प्रेमावेश में आ गई कि उनको लगा कि मुझे यहां बांके बिहारी का दर्शन सतत करना है। ये इतने इनका सौंदर्य और इनका माधुर्य इतना गहरा है कि मैं यहां छोड़ के अपने गांव में वापस नहीं जाना चाहती। परंतु कैसे हो सकता था, वो तो राजकुमारी थी, उनको वापस अपने राजधानी में तो जाना था। तो बड़े कठिनाई से उनके साथ में जो आए थे उन्होंने सब वो उनको ले गए वापस। परंतु ये राजकुमारी बांके बिहारी जी को कभी भी भूल नहीं सकी, दिन रात उनका स्मरण करती रही और तरसती रही कि कब वो दिन आएगा मैं फिर से जाके बांके बिहारी का दर्शन कर पाऊंगी। तो वास्तव में ये जो तरस है, ये जो एक लोभ है कृष्ण की प्राप्ति के लिए, यही लक्षण है वो स्वाभाविक या नैसर्गिक प्रेम का। जब तक हमारे अंदर इस तरह की तरस नहीं आती है, तब तक हम श्री कृष्ण को उस तरह से नहीं प्राप्त कर पाएंगे जैसे कि वृंदावन के निवासियों ने किया। लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, यह लौल्य लालसा एकमात्र मूल्य है जिससे कि हम ये प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। ये कृष्ण भक्ति रस जो है यदि हम पाना चाहते हैं तो जहां भी उपलब्ध है इसे खरीद लो, रूप गोस्वामी कहते हैं। तो श्री कृष्ण भक्ति के रस को खरीदने का मूल्य क्या है? लालसा। ये जो तरस है ये एक तीव्र एक नैसर्गिक एक भाव है। तो इस राजकुमारी के हृदय में ऐसे भाव था। तो क्या हो गया कि वहां पर बांके बिहारी ने सोचा ये इतना आकर्षक है इस प्रकार का भाव, तो इतने सारे भक्त यहां मेरा दर्शन करने आते हैं, परंतु मैं वो उस राजकुमारी को दर्शन देना चाहता हूं। तो बांके बिहारी वहां चले गए। बांके बिहारी अर्थात विग्रह, वो विग्रह वहां पर प्रकट हो गए। और यहां पर जब पुजारी ने सुबह आके मंदिर खोला और देखा तो अरे विग्रह ही नहीं है, तो हलचल मच गया वहां पे मंदिर में। तो सबको जगाया गया, सारे सिपाही सैनिक इधर उधर सब भागने लगे कि कहां गए बांके बिहारी जी। तो सब जगह ढूंढा ढूंढा सब जगह वृंदावन में कहीं मिले नहीं। और जो 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 भी आए थे दर्शन के लिए सबको पूछा, अंततः अनेक दिनों के बाद ये खबर मिली को वहां पर वो राजपूत राजकुमारी के कमरे में है। तो ये लोग जब वहां पहुंच गए तो देखा तो राजकुमारी वहां बड़े प्रेम से इनकी सेवा कर रही हैं। तो फिर बहुत कठिनाई से बांके बिहारी को वो फिर से लेकर आए। तो उसके बाद वहां के पुजारियों ने देखा कि आइंदा ऐसे नहीं होना है, तो उन्होंने पर्दा लगा दिया भगवान के सामने। पहले पर्दा नहीं होता था, लोग आके दर्शन करके चले जाते थे। अब क्या करते हैं? पर्दा रखते हैं और पर्दा बीच बीच में बंद कर लेते हैं, फिर खोलते हैं थोड़े मिनटों के लिए, दर्शन खुला रखते हैं फिर पर्दा बंद कर लेते हैं। तो ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि उनको डर है कि ये बांके बिहारी इतने आकर्षक हैं कि यहां इनके भक्त जो आएंगे जब बांके बिहारी को देखेंगे और इतने भाव विभोर हो जाएंगे तो भक्तों के प्रेम को देखकर दोबारा कहीं बांके बिहारी यहां से भक्तों के साथ न चले जाएं। तो हम कम समय के लिए दर्शन एक साथ में देंगे तो भक्तों का जो दर्शन है वो लंबे समय तक नहीं रहेगा, थोड़े समय तक दर्शन करेंगे, दर्शन बंद हो जाएगा फिर खुलेगा। तो इस प्रकार से बांके बिहारी जी को रहा मंदिर में रखने के लिए बीच बीच में पर्दा खोलते हैं बंद करते हैं। ये भाव है वहां भक्तों का। और ऐसे भी वहां के लोग बताते हैं कि यदि कोई लंबे समय तक बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे तो फिर वो भी भाव होकर उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो खैर ये एक प्रथा है जो कि शुद्ध कृष्ण प्रेम पर आधारित है। एक बार ऐसे हुआ कि एक भक्त था जिसको भगवान को पंखा चलाने की सेवा दी गई थी। तो वो पंखा चला रहा था बिहारी जी को रात के समय, क्योंकि आप तो जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में वृंदावन में बहुत गर्मी होती है, तो रात के समय भी सोना मुश्किल हो जाता है वहां पर। और उस समय बिजली आदि नहीं थी। आजकल मंदिरों में भगवान के लिए पंखे वातानुकूलित परिस्थिति आदि की व्यवस्था की जा सकती है, परंतु उन दिनों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे व्यक्ति को रखा जाता था जो भगवान को विश्राम करते करते उनको पंखा चलाता था। क्या करते थे कि एक रस्सी होती थी, आपने देखा होगा पुराने राजमहलों में एक रस्सी को ऐसे खींचते रहने से वो पंखा ऐसे चलता था, है ना। तो ये रात भर ऐसे ये करता था, ऐसे सेवा में लगाया गया था उसको। तो भी रात का समय था, गर्मी थी, सेवा करते करते उसको नींद आ गई। तो फिर जब उठा तो देखा कि अरे भगवान नहीं है, तो पर्दा खोल पीछे खड़ा, अरे भगवान कहाँ है, गायब। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि माँ की बिहारी जी वापस आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि काफी श्रम करके आ रहे हैं, जो चेहरा है वो लाल लाल हो गया, थोड़े पसीने के बूंद इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। तो उनको पता नहीं चला कि ये क्या हो गया। फिर उन्होंने जो पुजारियों को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो उसके बाद सारे पुजारियों को पता चला कि जो बिहारी जी हैं ये रात को निधि वन में जाते हैं और रासलीला करते हैं। तो ऐसे एक भाव है वहाँ के बिहारी मंदिर में, ऐसे एक मान्यता है वहाँ के भक्तों की। तो इसलिए वो सोचते हैं कि जब रात भर भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं तो थक जाते होंगे जब लौट के आते हैं, इसलिए उनको 4 बजे 3:30 बजे सुबह जगा दिया, तो उनकी नींद पूरी नहीं होगी, इसलिए बांके बिहारी मंदिर में मंगल आरती नहीं करते हैं। बाकी मंदिरों में जो है मंगल आरती होती है ना 4:30 बजे, कहीं 5 बजे, 5:30 बजे, परंतु वहां सुबह सुबह 9 बजे करते हैं, क्योंकि उनको नींद चाहिए, आराम चाहिए, और घंटियां वगैरह भी नहीं बजाते हैं, वो डर जाएंगे ना, बच्चे हैं थोड़े बाल रूप में भी होते हैं कि वो भी भाव होता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि वृंदावन के भक्तों का भाव जो है वो बहुत विशेष होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इसका अनुकरण करें, फिर ये सहजीय हो जाएगा। सहजीय पद्धति क्या है कि कृष्ण भक्ति को सस्ता लेना, हल्का लेना, ये सोचना कि केवल भावुक होने से हम कृष्ण को वृंदावन के निवासियों की तरह प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सेवा करनी होगी, किस तरह से सेवा करनी होगी, साधु वर्तमानुवर्तनम, तो साधुओं के पद चिन्हों में चलना होगा। वृंदावन के निवासियों का प्रेम अद्भुत क्यों है और कैसे है, इसके बारे में भी शुकदेव गोस्वामी एक सुंदर श्लोक बताते हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहरुः कृतपुण्यपुञ्जाः। वो कहते हैं, इसके पहले, इस श्लोक के पहले सुखदेव गोस्वामी ने ये वर्णन किया था कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गायों को चराने ले जाते हैं वन में, तो गाय तो चरते हैं परंतु श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा करते हैं, खेल करते हैं। तो किस तरह के खेल करते हैं, जैसे दुनिया में भी बच्चे लोग खेलते हैं वैसे ही खेलते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने उदाहरण दिए हैं कि वो जितने भी पक्षी जानवर आदि सब होते हैं वन में, उनकी नकल करते थे। यदि कोई पक्षी होती तो जब पक्षी उड़ के जाती तो ये भी पक्षी की तरह उड़ने की नकल करते। कोई मेंढक होता तो मेंढक टर 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 कर रहा होता तो ये भी मेंढक के सामने जाके मुंह उसके अपना मुंह मेंढक के मुंह के पास में रख के टर 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 करते थे। फिर आगे कोई और पक्षी आ गया तो पक्षी की तरह या उस जानवर की तरह करते थे। भंवरे आ गए तो भंवरों की तरह गुन 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 करके पीछे पीछे घूमते थे। तो इस प्रकार के इनकी लीलाएं थीं। तो कौन सोच सकता है कि परम सत्य अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, वो साधारण बच्चों की तरह खेल रहे होंगे। तो ये बच्चे कितने भाग्यवान हैं कि परम सत्य के साथ उनको इस प्रकार से खेलने का सुअवसर प्राप्त हुआ, अहो भाग्य उनका है। तो वो भगवान जिनको कि सताम, जो ज्ञानी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, ब्रह्म सुखानुभूत्या, वो भगवान जिनको कि ये ज्ञानी लोग निराकार ब्रह्म का स्रोत समझते हैं, वो भगवान जिनको कि माया से आश्रित जो लोग हैं, जो अल्पज्ञ हैं, वो लोग जो इस भगवान को साधारण बालक समझते हैं और साथ साथ में जो थोड़े श्रद्धालु भक्त हैं, जो भगवान को अपना स्वामी समझते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण इन ग्वाल बालों के साथ इस तरह के कार्य कर रहे थे। मोर के सामने जाके नृत्य करना, मोर से नृत्य की प्रतियोगिता करना, जो जानवरों के पक्षियों की बोली की नकल करना, वो परम सत्य ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे ये बच्चे कितने भाग्यवान हैं। साकम विचहरुः कृत पुण्य पुंजाः, उन्होंने कितने अपने पुण्य कार्यों की पूंजी एकत्र की होगी। ये साधारण पुण्य नहीं है, भक्ति के पुण्य कार्य है। कितने जन्मों से उन्होंने भगवान की भक्ति की होगी कि आज अनेक जन्मों के भक्ति का फल उन्हें प्राप्त हो गया है कि भगवान कृष्ण के साथ ये इस तरह के खेल खेल रहे हैं। यदि समझ लीजिए कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो कहीं जंगल में जाके लोगों के साथ इस तरह से खेले तो कैसे लगेगा? लोग बोलेंगे ये कैसे प्रधानमंत्री है, कैसे राष्ट्रपति है, है ना? तो भगवान कृष्ण राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि से कितने ऊंचे हैं। यहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा आदि एक देश के होते हैं, एक राज्य के होते हैं, परंतु ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के राजा हैं श्री कृष्ण, और वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और ये ग्वाल बाल कोई साधारण गांव के बच्चे नहीं हैं, बहुत बड़े संत हैं अपने पिछले जन्मों से, जिनको ये अवसर मिला भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। कल मैं श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था, जिसमें प्रभुपाद जी इसी श्लोक का उदाहरण देते हैं, और बार बार वो कह रहे थे कृत पुण्य पुंजाः, कि ये ग्वाल बाल इन्होंने कितने जन्मों तक भगवान की भक्ति की। प्रभुपाद जी कहते हैं ये कृष्ण को प्राप्त करना एक जन्म की बात नहीं है, इन्होंने अनेक जन्मों से कृष्ण की भक्ति करके वो पूंजी एकत्र की थी, इसलिए आज वो वृंदावन में जाके कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी फिर अंत में कहते हैं उस प्रवचन में, तो हमें भी तैयारी करनी चाहिए वहां जाके कृष्ण के साथ खेलने के लिए। तो जो अहो सौभाग्य इन ग्वाल बालों को मिला है वो हमें भी मिल सकता है, जो सौभाग्य गोपियों को या अन्य व्रजवासियों को मिला है वो हमें भी मिल सकता है, परंतु जैसे मैंने पहले कहा, इसको सस्ता नहीं लेना है, हल्का नहीं लेना है, केवल भावुक होके नहीं चलेगा। जो भी हमारे आचार्यों ने हमें नियम, विधि, निषेध आदि बताए गए हैं, बड़े सख्ती से इनका पालन करना होगा, साधन भक्ति के नियमों का पालन करना होगा, और शनै शनै क्रमशः हम प्रगति करते जाएंगे, और भगवान कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है वृंदावन के भाव में, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है किसी के? आप में से कितने भक्तों को वृंदावन में जाके श्री कृष्ण के साथ खेलना है? सबको जाना है, परंतु तैयारी करनी है, इसको हल्का नहीं समझना है, नहीं तो हम सहजीय कहलाएंगे। प्रभुपाद जी ने चेतना दी थी कि सहजीय मत बनो। ऐसे कई लोग होते हैं जो वृंदावन में जाते हैं और पुरुष होते हुए भी एक गोपी का वस्त्र पहनते हैं और सोचते मैं गोपी बन गया, ऐसे नहीं होता। साधन भजन करना है ठीक से, जहां भी हम रहते हो, बेलगाम में हो, लंदन में हो, जहां भी हो, हमें प्रभुपाद जी के बताए हुए आदेशों के अनुसार चलना चाहिए। फिर जब भगवान ठीक समझेंगे और भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी तो हमें भी अवसर ऐसे मिल जाएगा भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने के लिए।
हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि देहात्म बुद्धि, तो इस देहात्म बुद्धि के एक ही जन्म में हम इस देहात्म बुद्धि से मुक्त हो सकते हैं?
एक जन्म में साधारणतः नहीं हो सकते जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, परंतु हमारा जो वर्तमान का जन्म है, इस समय का जो हमारा शरीर है, ये जन्म है, इसके पहले भी हमारे अनेक जन्म हुए हैं ना, उसमें भी हमने भक्ति की है, इसलिए आज हम भक्ति में हैं, अन्यथा हम भक्ति में नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्व जन्मों में हम सब ने थोड़ी बहुत भक्ति की हुई है, इसलिए आज हमें ये सुअवसर मिल रहा है भक्तों के संग में आके कुछ श्रवण कीर्तन करना, सेवा करना। तो हमें जानना चाहिए या सोचना चाहिए कि ठीक है एक जन्म नहीं हो सकता, परंतु पिछले कई जन्मों में मैंने कर दिया है, तो इस जन्म को ही मुझे अंतिम जन्म बनाना है। अभी वो हो या नहीं हो, वो हमारे हृदय पूर्वक प्रयास से और भगवान और गुरुजनों की कृपा से हो सकता है। ठीक है, हाँ।
ब्रजवासी जो भक्ति करते हैं भगवान की, तो वो शुद्ध भक्ति केवल भगवान के लिए, कृष्ण के लिए रहती है, उसमें भगवान कृष्ण की भगवत्ता का आधार नहीं रहता उसमें, तो केवल कृष्ण के लिए रहती है। पर वैकुंठ में भगवत्ता का आधार रहता है, तो वो अहेतुकी कैसे माने जाएंगे?
अहेतुकी कैसे है वैकुंठ के भक्तों का,
क्योंकि उसमें ऐश्वर्य ज्ञान का
नहीं। अहेतुकी का मतलब है कि हमारे भक्ति करने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि भगवान मुझे आप ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, ऐसी कोई हेतु नहीं होनी चाहिए, ये है। परंतु जो बात कही आपने वो सही है कि वैकुंठ में भक्तों को ये ज्ञात होता है कि ये नारायण भगवान है। वृंदावन में कभी कभी पता होता है, कभी नहीं होता है, और जब होता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है वृंदावन का भाव। इसलिए वृंदावन का भाव वैकुंठ के भाव की तुलना में अधिक मधुर है, मीठा है।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण
महाराज जी, जिस भक्ति मार्ग से हम जुड़े हैं, इसमें भगवान की यानी ऐश्वर्य भाव में ही हम लोग पूजा करते हैं और अपने आप को दास दासोदम करके यानी हमें अपना भाव समझना चाहिए। तो इसके ऊपर की भी भाव है, जैसे यानी वात्सल्य भाव है या माधुर्य भाव है, तो क्या भगवान को लेकिन जो दूसरे भाव हैं यानी माधुर्य भाव, वो सर्वश्रेष्ठ भाव लगता है, तो हमें जैसे जन्म जन्मांतर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपके दासों का दास बन के आपकी सेवा करते रहूं। तो भगवान का जो भाव है यानी जो भगवान चाहते हैं कि यानी माधुर्य भाव में जो करता है उसको सबसे प्रिय है, यानी भगवान को वो प्रिय है, तो वो स्टेज तक आने के लिए कभी कुछ यानी प्रयास या भगवान की इच्छा को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उस तरफ जाने का क्या हमें कभी विचार नहीं करना चाहिए?
कर सकते हैं अवश्य, परंतु जैसे मैंने पहले कहा, हल्का लेकर नहीं, सस्ता लेकर नहीं, साधारण भावुकता के बल पर नहीं। हमारे गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हमें करना चाहिए, फिर अपने आप वो भाव आ जाएगा। ये बात सही है कि जब हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं तो ये एक वैकुंठ भाव में सेवा होनी चाहिए, अर्थात ये बहुत अच्छी तरह से जानकर कि राधा कृष्ण ये साक्षात राधा रानी और श्री कृष्ण हैं और उनकी सेवा हमें अच्छी तरह से करनी चाहिए, सम्मान से नियमों का पालन करना चाहिए। वहाँ जब जाते हैं तो अंदर बातचीत नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ पर भी नहीं करना चाहिए, और खास करके अंदर, और स्वच्छता से जाना चाहिए, हमारा भाव भी सही होना चाहिए, सब कुछ सही समय पे होना चाहिए, भोग समय पे लगना, आरती समय पे होना, श्रृंगार सही तरह से होना। तो इस प्रकार से ये लक्ष्मी नारायण भाव में स्वरूप में हम सेवा करते हैं, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। यदि कोई भक्त राधा कृष्ण को वृंदावन के भाव में देखना चाहते हैं, अवश्य देखें और देखना चाहिए, परंतु अपने अंतःकरण में। परंतु वृंदावन के भाव में आके ऐसा कहीं न हो कि हम समय की सीमा का पालन न करें, सही समय पे भोग न चढ़ाएं, और चलो अभी हम वृंदावन में ऐसे तो कोई नियम नहीं, चलो हम ऐसे कर लेते, नहीं ऐसे नहीं। अंतःकरण में वो भाव हम रखें, परंतु हमारे कार्यों में नियमों का अच्छी तरह से पालन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। तो आज के रविवार के प्रीति भोज कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम हम परम पूज्य भक्ति रसामन स्वामी महाराज जी का धन्यवाद देना चाहेंगे आज के दोपहर के प्रवचन के लिए, तीन बार जोर से हरि बोल कह के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इससे पहले कि हम सूचनाएं प्रारंभ करें, हम उन्हीं सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे जो आज पहली बार इस मंदिर में आए हैं, तो उनसे विनती करते हैं कि कृपया अपने स्थान पर कुछ समय के लिए खड़े हो जाएं।